भगवते वासुदेवाय अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनाम संघ संस्थापिकाचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अवेचनार भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभा उपाध्य की अपार कृपा से आज श्री श्री राधा राधिका रमन श्री कृष्ण बलराम मंदिर स्कान पंजाबी बाग में श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 22वें अध्याय बलि महाराज की शरणागति के 6ठे और 7वें श्लोक का श्रवण वर्णन करेंगे। बलि महाराज प्रहलाद महाराज के पौत्र है, विरोचन के पुत्र हैं। ये दिति का वंश है, इसलिए इसको दैत्य कहते हैं। और कश्यप की अन्य पत्नियों के बीच में दो मुख्य दिति और आदिति है। आदिति का अर्थ है सबको जोड़ के रखे, और उसके पुत्र 12 देवता आदित्य हैं, उनमें से एक भगवान वामन देव है। और दिति के पुत्र दैत्य कहलाते हैं, और दिति के पुत्रों में हिरण्याकश हिरण्याकशिपु और फिर हिरण्याकश के प्रहलाद और प्रहलाद के विरोचन और विरोचन के बलि महाराज। तो अगर देखेंगे तो कश्यप का ही सारा परिवार है, और बलि महाराज जो है वो वामन देव के रिश्ते में भाई हैं, मासी है। तो आदित्य और दिति दोनों बहनें हैं, और कश्यप एक उनका दादा एक ही है, वहाँ से एक ही परिवार के दो विभाग। जैसे कौरव पांडव एक ही परिवार के दो हैं, तो ये परिवार तो एक ही है। तो कश्यप कश्यप की अन्य पत्नियों के बीच में दिति और आदित्य, दिति के दैत्य और आदित्य के आदित्य। तो ये बहुत एक परिवार के बीच की बात है असल में। लेकिन दिति के सारे पुत्रों को दैत्य कहते हैं, कश्यप की दूसरी पति दानु है, उसके पुत्रों को दानव कहते हैं। तो दैत्य और दानव ये असुरों की श्रेणी में आते हैं, और आदित्य के पुत्र आदित्य ये देवता हैं सारे, ये 12 देवता है, और उनमें से एक भगवान विष्णु का अवतार है जो ये वामन देव जिसकी कथा चल रही है। तो ऐसे समझना चाहिए, कोई सामान्य बलि महाराज कोई ऐसा राक्षस नहीं है, कश्यप के संतान है। और थोड़ा ध्यान देंगे, हिरण्याकश और हिरण्याकशिपु भी कोई असुर नहीं थे, ये तो जय और विजय वैकुंठ से भगवान की लीला में भाग लेने के लिए आए थे। तो इस वंश को इस तरीके से असुरी अभिन्य कर रहे थे, लेकिन असुरों जैसे काम नहीं है इनके, ये थोड़ा सा विचार जैसा विषय है। नहीं तो भागवत में क्या जरूरत थी इनके लिखने की, अगर इनको ये महाजन है, दो महाजन, प्रहलाद भी महाजन और बलि भी महाजन, तो इसलिए असुर कौन है और लीला में भाग लेने के लिए असुर का अभिनय कौन कर रहा है, ये भी समझ में आना चाहिए। एक बिल्कुल असुर होते हैं, और एक असुर का सिर्फ लीला में भाग लेते हैं, जैसे हिरण्याकश हिरण्याकशिपु असुर का लीला में भाग ले रहे थे, वो असुर हैं नहीं, नहीं तो भगवान उनके लिए क्यों आएंगे। तो ये जब इसको ऐसे सुनते हैं तो बलि महाराज के प्रति हमारा धारणा ऐसी होनी चाहिए कि ये आत्मनिवेदन भक्ति सिखाने के लिए ये सारी लीला हो रही है। जब भक्ति के आचार्य हैं, आत्मनिवेदन भक्ति सिखाने वाले हैं, तो ये एक लीला है जिसमें हमको शिक्षा दी जा रही है कि भगवान को सब कुछ समर्पण कैसे करना चाहिए। और विशेष रूप से बलि महाराज वचन पालने में और दानियों में सर्वश्रेष्ठ, भगवान ने जिसको दानी माना है एक बलि महाराज को और एक कर्ण को, तो ये चरित्र जो है ये इस दृष्टि से देखना चाहिए। तो आज के श्लोक में कल से हम 2-3 दिन से हम सुनते आ रहे हैं कि बलि महाराज भगवान को जो वचन दिया था उसको पालन करने में असमर्थ रहे, क्योंकि दो चरण में ही भगवान ने उनके बाहुबल से प्राप्त की हुई सारी पृथ्वी और उसके यज्ञ से प्राप्त किए हुए स्वर्ग आदि लोगों को राज नाप लिया, और तीसरे चरण रखने के लिए स्थान बलि महाराज से मांगते हुए कहने लगे कि तुम दानी बन रहे थे, कहाँ रखूं बताओ। तो बलि महाराज ने कहा ये सब जो साम्राज्य मैंने अपने बाहुबल से प्राप्त किया था और स्वर्ग आदि ये मेरे बुद्धि से हमने पुण्य कार्य करके प्राप्त किया था, इन दोनों को प्राप्त करने वाला मैं स्वयं तो अभी बचा हुआ हूँ, और आपके तीसरे चरण के लिए मेरा ये सिर आपके लिए हाजिर है। तो ये जो अहम भाव देना है, मैं कर्तापन देना है, बलि महाराज कर्तापन और भोक्तापन दोनों भगवान को दे दिया। कर्ता मतलब मैं करता हूँ, भोक्ता मतलब ये मेरा था, इसको मुझे भोगना था, दोनों दे दिया। तो ये आत्मनिवेदन में मुख्य है, कर्तापन और भोक्तापन का त्याग करना और भगवान को दोनों समर्पण करना। तो भगवान ने बलि के सर के ऊपर चरण रखा, रखा क्या उससे पहले का इसको बांध दो, ये वचन पूरा कर ही नहीं पाया। अब बलि महाराज बंधा हुआ है वर्ण फांस में, ये वरुण की रसी है, वर्ण फांस है, नाग फांस है, ये विशेष देवताओं के पास ऐसे बंधन के एक अस्त्र होते हैं, एक शस्त्र होते हैं। अस्त्र होते हैं जैसे तीर है, कमान है, तीर कमान है, तलवार है, नेजा है, इसको अस्त्र कहते हैं, और शस्त्र ये इसको शस्त्र कहते हैं, और अस्त्र वो होते हैं जो मंत्रों से आवाहन करके चलाए जाए। तो शस्त्र और अस्त्र दो अलग चीज़ें, शस्त्र मतलब जो हाथ में दिखे, हाथ में पड़ा है वो, तो इसको शस्त्र कहते हैं, लेकिन अस्त्र जो है वो सूक्ष्म मंत्रों से आवाहन किए जाते हैं। तो ये नाग पास, वरुण पास, ये अस्त्र नहीं है, ये अस्त्र है, शस्त्र नहीं है, जिनसे आवाहन करके बांध देते हैं, जैसे ब्रह्मास्त्र, इसका नाम ब्रह्मास्त्र, शस्त्र नहीं है, ब्रह्मास्त्र है, वरुण अस्त्र है। हाँ, तो अस्त्र का मतलब मंत्रों से जिसका आवाहन हो, और शस्त्र जो देखने में आने वाले हथियार होते हैं वो शस्त्र कहलाते हैं। अब बंधे हुए बलि महाराज भगवान को जो प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी जो सहनशीलता है उसका इसमें आज वर्णन है। तो भक्त के लक्षणों में एक मुख्य लक्षण है सहनशीलता, तो बलि महाराज की सहनशीलता का आज के श्लोक में वर्णन है। ये दो श्लोक साथ में आइए पाठ करते हैं। यस्मिन् वैरा यस्मिन् वैर अनुबन्धेन व्यूढ़ेन विबुद्ध इत्रा बहवो लेभेरि सिद्धिं यान्तो एकांत योगिनः तेनाहं निग्रहीतो अस्मि भवता भूरि कर्मणा बधश्च वारुणैः पाशैः नाति वीर्णे न च व्यथे यस्मिन् वैरानुबन्धेन व्यूढं विबुद्ध इत्राः बहवो लेभेरि सिद्धिं यां तु ह एकांत योगिनः तेनाहं निग्रहीतो अस्मे भवता भूरि कर्मणा बधश्च वारुणैः पाशैः नात्रि ना अतिवीर्णे न च व्यथे यस्मिन् वैरानुबन्धेन व्यूढेन विबुद्धयित्रा। बहवो लेभेरि सिद्धिम् यां तु ऐकान्तयोगिनः तेनाहं निग्रहीतोऽस्मि भवतो भूरि कर्मणा। बधश्च वारुणी पाशयेन् नातिविरुडेन च व्यथे। हरे कृष्ण। वैर अनुबंधेन विरूढ़। वैर अनुबंधेन विरूढ़। विरूढ़ का मतलब अति गाढ़। वैर अनुबंधेन मतलब वैर के संबंध से, और उसके नीचे बहवो बहुत से, और उसके आगे शब्द है विबुद्ध इत्राह। विबुद्ध इत्राह का मतलब असुरी प्रवृत्ति के लोग जो देवता नहीं है। विबुद्ध इत्रे, और दूसरा होता है विबुद्ध श्रेष्ठ। ये इसी आठवें स्कंद के बारहवें अध्याय में जहाँ भगवान शंकर मोहिनी मूर्ति से मोहित होते हैं, वहाँ उनके लिए शब्द है विबुद्ध श्रेष्ठ, तो देवताओं में श्रेष्ठ। और यहाँ है विबुद्ध इत्र। इत्र का मतलब नीच, जो बुद्धिमानों में कम है, यानी इसका मतलब असुर। श्रील प्रभुपाद ने डीमन नॉट डेमिगॉड्स जो अंग्रेजी में शब्द अर्थ में लिखा है, तो इसका भाव ये हुआ कि जो श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ कौन नहीं है? जो आपसे वैर भाव रखते हैं। कैसा वैर भाव? विरूढ़, अति आपके प्रति जिनकी शत्रुता होती है। आपके साथ रिश्ता कैसा है? बोला शत्रु का। आपको अपना बड़ा शत्रु मानते हैं। यस्मिन का मतलब आपको, आपको जो अपना भारी शत्रु मानते हैं और शत्रुता से ही आपसे संबंध रखा हुआ है, ऐसे असुर बहुत सारे ले भेरी सिद्धि, उनको भी सिद्धि प्राप्त हुई। उनको भी सिद्धि प्राप्त हुई। बोला कैसी सिद्धि प्राप्त हुई? बोला सिद्धि प्राप्त हुई जैसी याम, जैसी तुहे मिलती है एकांत योगिना। जो योगी ध्यान करके जिस सिद्धि को प्राप्त करते हैं, ऐसे योगियों जैसी सिद्धि कितने ही असुर वृत्ति के लोग जो आपसे अति गाढ़ शत्रुता रखते हैं, उनको मिली। बहुत से ऐसे उदाहरण है, शिशुपाल को सिद्धि मिली, अघासुर की आत्मा भगवान में प्रवेश कर गई। तो ये तो योगियों को जो सिद्धि नहीं मिलती है, वो सिद्धि नचुरों को कैसे मिल गई? और मिली है ऐसे। जब शिशुपाल का भगवान ने सुदर्शन चक्र से गर्दन को काट दिया, सर को अलग कर दिया, तो शिशुपाल की आत्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रवेश किया। और ये देख के युधिष्ठिर महाराज आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, नारद जी, जो योगियों को गति नहीं मिलती है, वो इस द्वेषी वैर भाव रखने वाले को कैसे मिली? और सारा सातवां स्कंद श्रीमद् भागवत का नारद और युधिष्ठिर के बीच में संवाद है। दोनों महाजन हैं, और ये हस्तिनापुर के महल में संवाद है कि कैसे उसको सिद्धि मिली है। तो ये प्रश्न है। और यहां बलि महाराज कहते हैं ऐसे बहुत से बहु मतलब बहुत से, ले भेरी मतलब प्राप्त की, और सिद्धि का मतलब आप को प्राप्त किया, उसके जीवन सिद्ध हुआ। और भाव क्या था, अति गाढ़ शत्रुता का भाव आपके प्रति रखते थे। और फिर कहते हैं अब ये बात की सबके लिए कि ऐसे बहुत से और असुरों को सिद्धि प्राप्त थी है, हुई है। और फिर कहते हैं तेन अहम निगृहित अस्मि, आपने मेरे को दंडित किया है। निगृहित, निगृहित मतलब रोकना, जैसे मन को निग्रह करना, बाहर जाने से रोकना, तो आपने हमको दंडित किया है, रोका है। भवता, आपने, ये कोई एक आपका उद्देश्य नहीं है, क्योंकि आप कैसे हैं भूरी कर्मणा, आपके जो कार्य होते हैं उसमें बहुत से रहस्य होते हैं, वो कोई सामान्य कार्य नहीं होते। जैसे सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितुम, अपने सेवक के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए। कौन से सेवक का बोला ना, एक तो सेवक ब्रह्मा जी है, उसने कहा था कि मेरी सृष्टि से कोई नहीं मार सके, तो ब्रह्मा का काम कर दिया। प्रहलाद ने कहा था खंभे में है, तो प्रहलाद की बात को सत्य कर दिया। चार कुमारों ने कहा था कि असुर हो जाएंगे, तब उनकी बात को पूरा कर दिया। तो एक काम में आपके दस और भी उद्देश्य होते हैं। भूरी कर्मणा मतलब जो आपके काम होते हैं वो जिसमें बहुत रहस्य होते हैं, लगता है कि एक काम कर रहे हैं लेकिन उन कामों में बहुत सारे रहस्य होते हैं। जैसे बलि महाराज को इस बांधने के पीछे कहा जाए तो क्या रहस्य है भाई, इतनी कृपा क्यों कर रहे हैं इसके ऊपर भाई, प्रहलाद का वंश है, इसको मारना तो है नहीं। पहले कहा है प्रहलाद को कि 21 पीढ़ियां आपका उद्धार करूंगा, तो इसका उद्धार तो पहले से हो ही चुका है, अब इसको भक्ति में प्रतिष्ठित कर रहे हैं, ऐसी भक्ति में प्रतिष्ठित कर रहे हैं कि आगे चल के ये आत्मनिवेदन भक्ति का आचार्य बन जाएगा। तो आपका इस दंड के अंदर कोई और हेतु होगा, क्योंकि पहले श्लोक में कह के आए कि आपका दंड तो हमारे भले के लिए ही होता है, ये तो आपका शुभ चिंतन है हमारे लिए, तभी आप ऐसे करते हो। तो कहते हैं इसलिए आपके जो ये अद्भुत कर्म है इसमें बहुत रहस्य है। क्या रहस्य है? रहस्य ये है कि आपको मैं इंद्र भी बनाऊंगा, ये तो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन कल इंद्र भी हम मुझे बनाओगे आप, ये आपके कर्म आप जानते हो, हम नहीं जानते। इसलिए कहते बधस्य वारुण पास ही, आपने हमको वारुण के पास से बांध लिया है दंड देने के लिए। न अति वृढ़, इसका मुझे ज्यादा ग्लानि नहीं है, इससे मुझे शर्म नहीं आ रही है, लज्जा नहीं आ रही है। आप स्वामी हैं, आपने मुझे बांध दिया, अपना मान के बांध दिया है, तो मैं इसमें लज्जा नहीं आई, मेरे को शर्म नहीं आ रही है इसमें, और ना व्यथे और ना ही कोई मुझे पीड़ा हो रही है। तो ये हो गया उनका सहनशीलता। कितनी सारी, अब राजा है बलि महाराज, राजा क्या स्वर्ग के राज को प्राप्त कर लिया है, धरती का क्या स्वर्ग का राज प्राप्त कर लिया है। अब ऐसे बलि महाराज अपने सारे समाज के साथ सामने, रानियों के सामने, मंत्रियों के सामने दंडित हो रहे हैं, बंधे हुए हैं, तो कहते मुझे लज्जा नहीं आ रही और मुझे कोई पीड़ा भी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि जो दंड देने वाला है वो हमारे हित के लिए दे रहा है, वो हमारे को दुख पहुंचाना उसका उद्देश्य नहीं है, हमारे को डीमोरलाइज करना उसका उद्देश्य नहीं है, हमारे को एलिवेट करना, हमारे को जो है ऊपर उठाना है उसका, इसलिए काय के लिए दुख करें। जैसे ये बहुत बड़ा शिक्षा है कि कभी आध्यात्मिक गुरुजन किसी को दंडित करते हैं या माता पिता बच्चों को दंडित करते हैं, तो उसके पीछे उनका भला होता है, इसलिए उसमें लज्जा करने की कोई बात नहीं है और ना ही उसको पीड़ा कर समझ के सहना चाहिए, क्योंकि वो अंत तो गत्वा उनके हित के लिए है। तो अब इस श्लोक का अर्थ क्या हो गया? हिंदी हिंदी उठा लो। इस श्लोक का अर्थ हो गया बहुत सारे विबुद्ध इत्र। विबुद्ध इत्र मतलब जिनकी बुद्धि बहुत नीचे स्तर की है। बुद्धि नीचे स्तर की किसकी है? जो भगवान की सेवा में नहीं लगता या भगवान से द्वेष करता है। सिद्धांत ये है विबुद्ध इत्रस और विबुद्ध श्रेष्ठ। जिनकी बुद्धि विशेष रूप से श्रेष्ठ है वो भगवान की भक्ति करते हैं, और जिसकी बुद्धि नीचे स्तर की होती है वो भगवान से द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वैर भाव रखते हैं। तो ये दोनों का अंतर है। तो ऐसे बहुत सारे विबुद्ध इत्र नीचे बुद्धि रखने वाले, आपसे निरंतर वैर रखने वाले, अंत में सिद्धि ऐसी प्राप्त की जैसी एकांत योगियों को मिलती है। आपने ये सिद्धि उनको क्यों दी? क्योंकि वो मेरा ध्यान कर रहे थे। भाव किसी से भी करें। ये कौन सा श्लोक सातवें अध्याय में है कि गोपियों ने काम से, शिशुपाल ने वैर से, मथुरा वासियों ने आश्चर्य से, यादवों ने संबंध से, आपने भक्तों से, जैसा भी संबंध रखोगे लेकिन सबको मिलेगा लाभ ही भगवान से। कैसे भी भाव से भगवान के पास जाएंगे तो भगवान ऐसे हैं कि जैसे कि रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, कहीं से भी उसको जाके आप चपकेंगे तो मीठा ही मिलेगा। चूंटी भी जाके खाएगी तो मीठा मीठा होगा। समझदार बुद्धिमान साधु खाएगा तो भी मीठा लगेगा, और कुत्ते बिल्ले को दो तो उसको भी मीठा ही लगेगा रसगुल्ला, खट्टा नहीं लगेगा, खराब नहीं लगेगा। तो ऐसे भगवान तो इतने दयालु है कि कैसे भी उसके पास जाके गिरे तो उसका तो हित ही होगा। कैसे भी जाओ तो वो ऐसा है कि उसको कहीं से भी कैसे भी भाव से उसके पास जाओ। तो ये कैसे? इस भगवद गीता का कौन सा श्लोक आप कहेंगे इसके लिए? ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजामि अहम्। जिस भाव से मेरे पास आएगा मैं वैसे ही व्यवहार करूंगा, लेकिन करूंगा हित। कहते साधु से किसी का अहित होता ही नहीं है, भगवान किसी का अहित करते ही नहीं। अगर अहित दिखता भी है तो उनके भले के लिए। बाहर से दिखता है अहित लेकिन असल में है उनके भले के लिए। और आगे कहते हैं हे मेरे स्वामी, आपके सारे जो कार्य है उनके बहुत उद्देश्य होते हैं। आपके कार्य सामान्य नहीं है, दंड देना ही आपका कार्य नहीं है। जैसे एक श्लोक पांचवें स्कंद भागवत में किम पुरुष वर्ष में है कि भगवान श्री रामचंद्र का अवतार केवल रावण को मारने के लिए नहीं था, परंतु संसार को शिक्षा देने के लिए था। वो श्लोक पांचवा स्कंद, एक मिनट, उस श्लोक निकाले तो आपको ये भूरी कर्मणा का भाव समझ में आना चाहिए हमको। पांचवा स्कंद 18वां अध्याय होना चाहिए, किम पुरुष 19वें में होगा। हरे कृष्ण। जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे। ये श्लोक को देखिए, हरे कृष्णा। मर्त्यावतारास्तव्यमर्त्य शिक्षणम् रक्षो वधायेव न केवलं विभो कुतो अन्यथा स्यादः रमतः स्व आत्मनः सीता कृतानि व्यसना अनीश्वरस्य। इस मृत्यु लोक में भगवान ने मानव जैसी लीला करने के लिए अवतार लिया था, वो संसार के मानवों को शिक्षा के लिए था। रक्षो वधाय न केवलम विभु, केवल राक्षस रावण का वध करना, ये पांचवें अध्याय का पांचवा स्कंद 19वां अध्याय और पांचवा श्लोक है, ये हनुमान जी कह रहे हैं, वो भी एक दास्य भक्ति के आचार्य हैं। वो कह रहे हैं आपका भगवान श्री रामचंद्र का केवल राक्षस रावण का वध करण ही एक उद्देश्य नहीं था, नहीं तो कुत्य अनथ्या स्याद रमत तस्व आत्मनः, नहीं तो वो आत्मा राम है, अपने आप में रमण करते हैं। और अपने से प्रभुपाद जी लिखते हैं एक के अनेक सीताएं प्रकट कर सकते हैं, वो सीता के लिए इतना सारा विलाप क्यों कर रहे थे? मतलब किस लिए कर रहे थे? कि मानव संसार को शिक्षा देना चाह रहे थे कि जीवन में पत्नी को ग्रहण करने के बाद ये सारी परेशानियां आएंगी और भुगतनी पड़ेगी। हाँ लिखा ऐसा ऐसा लिखा है, ये मिशन स्टेटमेंट भगवान रामचंद्र के इसकी लीला के पीछे है कि गृहस्थ में प्रवेश करना है तो जवाबदारी इतनी भारी है कि कभी सात समुद्र पार करने जाना पड़ेगा, कभी रावण जैसे राक्षस से लड़ना पड़ेगा, तो भी रक्षा करने की हिम्मत है तो हाथ पकड़ के शादी करो, नहीं तो अच्छा है मंदिर में ब्रह्मचारी बन जाओ, झंझट में पड़ो ही नहीं। दूसरा ये है कि या ये करो या ये करो, तो रावण को मारना मुख्य उद्देश्य नहीं था, मुख्य उद्देश्य था मृत्य शिक्षण, मानव लोक को शिक्षा देना उनका मुख्य उद्देश्य ये था। इसका अर्थ हुआ भूरि कर्मणा, भूरि कर्मणा का मतलब ऐसे कर्म जिनसे जिनसे भगवान की अन्य कई कार्य सिद्ध होते हैं। अब वापस अपने श्लोक के अनुवाद को पढ़ रहे हैं, तो बहुत से असुरी प्रवृत्ति के लोग जिनकी बुद्धि निम्न होती है, जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपसे वैर भाव गाढ़ रूप से निरंतर रखते हैं, उनको भी योगियों जैसी सिद्धि प्राप्त करते हुए देखा गया है। इसका अर्थ ये है कि आपके कार्य जो हैं वो भूरि कर्मणा है, उसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं और बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, कितने ही भक्तों की इच्छा पूरी करनी होती। और फिर कहते हैं लगता है कि आपने मुझे दंड दिया है बहुत प्रकार से, बहुत प्रकार से मतलब मेरा धन छीन लिया, मेरा पद छीन लिया, मेरे को बांध दिया, मेरे को अपमानित कर दिया, ये बहुत प्रकार से आपने मुझे दंड दिया है। दंड तो हर प्रकार से आपने मुझे लिखा है, बहुत प्रकार से मुझे दंड दिया है, फिर भी मैं शर्मिंदा नहीं हूं, मुझे लज्जा नहीं आ रही है कि आपने मेरे को वर्ण पास में बांध दिया है, और ही ना मुझे कुछ व्यथा हो रही है या मैं इसके लिए पश्चाताप कर रहा हूं, नहीं। तो सिद्धांत क्या स्थापित हुआ? भगवान की तरफ से कठिनाई जीवन में आए तो उसको भगवान का अनुग्रह समझ के सहन करना चाहिए, न मुझे लज्जा आ रही है और न ही मुझे पीड़ा हो रही है, ये दो चीजें हैं, ये मुख्य है। अब श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, बलि महाराज भगवान की कृपा का सराहना कर रहे हैं, भगवान आप बड़े दयालु हो, आपने कितने असुरों के ऊपर ऐसे दया की है, और आपकी कृपा निरंतर सबके ऊपर बरसती है, इसका मतलब आपके सारे कार्य आपकी कृपा ही है, कोई उसको कृपा समझता है और नहीं समझता है, लेकिन आप करते कृपाई, बलि महाराज एप्रिशिएटेड द लॉर्ड्स मर्सी, भगवान की कृपा का क्या कर रहे हैं बलि महाराज, एप्रिशिएट, क्या लिखा है हिंदी में, प्रशंसा कर रहे हैं। अकेले मुझ पे नहीं किए ऐसे कहते हैं, बहुत से असुरों पे किए, इसको क्या कहा जाए। आपकी अकेले मेरे ऊपर कृपा नहीं है, अनेक असुरों के ऊपर आपने पहले ऐसे कृपा की है। आगे कहेंगे हमारे दादा प्रहलाद के तो महान भक्त है, उसके लिए आपने अब तक, वो आगे वो भी कहेंगे आगे इस प्रसंग में प्रहलाद महाराज का नाम भी आएगा। तो ये आपने बहुत से कुपे ऊपर ऐसे कृपा की है और आप कृपा करने में बहुत ही उदार है और इसलिए आपको कृपालु कहा जाता है, ऑल मर्सीफुल, आप सर्वदा सबके ऊपर कृपा ही करते हैं, आपका नाम ही दयालु है, कृपालु है। और फिर बलि महाराज, अब श्री प्रभुपाद लिखते हैं, बलि महाराज वास्तव में पूर्ण रूप से शरण लिया हुआ भक्त था, परिपूर्ण शरणागत भक्त है बलि महाराज। बलि महाराज वाज इंडी ए फुली सरेंडर डिवोटी, पूर्ण रूप से भगवान का शरणागत भक्त था, लेकिन दूसरे तो असुर भक्त थोड़े भी नहीं थे, केवल शत्रु थे, उनको भी भगवान ने बहुत ऊपर का स्तर दे दिया। भाई अघासुर, अघासुर कृष्ण लीला में तो कोई भक्त नहीं था, उसको भगवान ने कैसे योगियों जैसी गति दे दी, उसकी आत्मा भगवान ने कैसे प्रवेश कर गई, क्या कारण था उसका। पूतना आई थी दूध पिलाने के लिए, उसको मां का स्थान दे दिया, भाई मां का भाई है, अब क्या करा, मामे का भी उद्धार करना पड़ेगा ना। वो उस व्याज से, पूतना की उस सेवा वाले भाव से अघासुर को भी भगवान ने वो स्तर दे दिया जिसमें कोई भक्ति नहीं थी। और क्या अघासुर में और क्या, कौन सी अच्छाई थी कि उसको भगवान ने योगी की गति दे दी, क्या था उसमें, कुछ भी नहीं था। पाप, अघ मतलब पाप, असुर जो पाप का पुंज था और सारे भगवान के ग्वाल बालों को तो पेट में ले ही चुका था, लेकिन भगवान ने ग्वाल बालों के ऊपर कृपा नहीं की, अघासुर के ऊपर भी कृपा कर दी। भाई जो मेरे भक्तों को अपने पेट में रखता है, अपनी छाती से लगा लेता है, उसका उद्धार तो करना चाहिए। लेकिन उदाहरण ये देते हैं कि पूतना के भाई के नाते उसका उद्धार किया, क्योंकि पूतना को ले भेरी मात्री गति दे दी, तो धात्री गति दे दी, तो फिर उसके भाई का भी उद्धार कर दिया, तो कोई कारण होगा ऐसे उसको क्यों उद्धार किया। बलि महाराज तो प्रभुपाद कहते हैं बहुत बड़े भक्त है, लेकिन बहुत से ऐसे थे जो भक्त थे ही नहीं, उनके ऊपर ही भगवान कृपा कर दी। इसलिए बलि महाराज ये समझ सकते हैं कि भगवान का कोई बहुत रहस्यमय उद्देश्य होगा जो ये मुझे दंड दे रहे हैं, भगवान के इस दंड के पीछे भगवान का कोई और उद्देश्य होगा। अब क्या उद्देश्य है भगवान का, एक तो माता आदित्य को भगवान ने वचन दिया है, क्योंकि भगवान का प्रकट्य क्यों हुआ, वामन देव का प्रकट्य पयोव्रत आदित्य माता जी ने रखा और भगवान प्रकट होके कहे कि मैं इस वक्त बलि महाराज से अन्याय पूर्वक राज नहीं छीन सकता हूं, क्योंकि वो धर्म के ऊपर चल रहा है, ब्राह्मणों के निर्देश में चल रहा है, और इसलिए मैं उसको पद से च्युत नहीं कर सकता, लेकिन आपकी की हुई भक्ति को भी मैं निष्फल नहीं कर सकता हूं। अब मैं क्या कर सकता हूं, माता मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट हो जाऊंगा, तो मैं इंद्र का छोटा भाई बन जाऊंगा, फिर अपने भाई की सहायता करने में मेरे को कोई आरोप नहीं लगेगा। ये भगवान ने एक युक्ति निकाली। युक्ति क्या निकाली? अब बोला आप कश्यप में मेरा ध्यान करो और किसी को बताना मत ये रहस्य। आदित्य को भगवान ने कहा कि ये रहस्य किसी को बताना मत। और एक समय में आदित्य और कश्यप के सामने भगवान पहले तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, फिर एकदम छोटे ब्राह्मण बन गए। और जब ये भगवान ब्राह्मण बने तब सब देवता आए उधर। अब सब देवताओं की परेशानी तो देवताओं की थी, जिनका राज चला गया था, इंद्र ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। तो भगवान को कितने काम करने थे, और देवताओं ने बलि महाराज को उपहार दिए हैं। क्या क्या उपहार किसने दिया? और सूर्य देव ने गायत्री मंत्र उनको दिया दीक्षा करके। और जो जो पिताजी कश्य बृहस्पति पिताजी ने उनको मेखला दी है, माता दुर्गा ने पहला पात्र दिया है भिक्षा का, पृथ्वी ने उसको मृगशाला दी है, वरुण ने छाता दिया है। तो सारे देवताओं ने उनको उपहार दिया है, क्योंकि देवताओं को कार्य करने जा रहे हैं। और यहां एक रूप गोस्वामी की शिक्षा अमृत में लिखा हुआ है कि भक्तों को भेंट लेनी चाहिए और भेंट देनी चाहिए। उसके नीचे एक लाइन और लिखी है कि सोच समझ के भेंट देनी चाहिए, कौन से भक्त को क्या देनी चाहिए। जब वामन देव ब्राह्मण आए हैं तो उसको लंगोट दिया है, भिक्षा का पात्र दिया है। और जब पृथु महाराज प्रकट किए हुए हैं तो राजा के लिए उसको रथ और घोड़े दिए हैं। तो किसको क्या देनी चाहिए? अब भाई कोई ब्रह्मचारी है उसको गिफ्ट में साड़ी और चूड़ियां देना तो ठीक नहीं है। भाई कौन सी किसको गिफ्ट आदान प्रदान करना चाहिए? भाई एक साधु ब्राह्मण है उसको शास्त्र गिफ्ट दे, आप दे उसको भागवत दे दो, बड़ा खुश हो जाएगा। भाई ब्राह्मण को ये देना चाहिए। अब ब्राह्मण को आप सोने का माला दो, वो परेशान होकर बाजार में बेच कहाँ रखो, तो घर ही नहीं है सोने के लिए, तो रखेगा कहाँ से संभाल के, पेड़ के नीचे सोता है तो क्या करेगा। उसको ऐसी चीज देनी चाहिए जो उसके काम में आए। तो ऐसे हमने देखा कि काम की चीजें नहीं देते हैं लोग। किसी के सेवा भी शास्त्र चाहिए। ब्राह्मण को क्या चाहिए? शास्त्र चाहिए, लोटा चाहिए, लंगोटा चाहिए, और क्या चाहिए? उसको क्या करना, उसको कुछ दे के और फंसा देना है दुनिया में। तो यहां इनको वो चीजें हैं जो एक ब्राह्मण के लिए चाहिए। तो काय के लिए वामन देव का प्रकट्य हुआ? देवताओं का हित करने के लिए। आदित्य माता जी की प्रार्थना को सुन के उसको फल देने के लिए। और इंद्र के छोटे भाई के रूप में प्रकट हो गए वामन देव बन के। और ये इस मनवंतर के अवतार भी है। ये जो मनवंतर चल रहा है इसके अवतार भी वामन देव है। ये मनवंतर वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, इसमें इंद्र पुरंदर है और वामन देव इसके अवतार है। तो एक मनवंतर का अवतार भी होता है, वो कोई विशेष कार्य करता है। तो ये कितने काम हो गए उनको सिद्ध करने। क्या बलि महाराज को दंड देने के लिए ही आए थे? और कोई काम नहीं था? बाहुल बलि महाराज को दंड देना होता तो किसी और को भेज देते, जैसे शंकर जी ने भेज दिया वीरभद्र को, और सारे यक्ष का दक्ष के यज्ञ को समाप्त कर गर्दन भी काट दिया। ये काम करने के लिए तो भगवान किसी असुर को भेज सकते थे, इसमें क्या? भाई भगवान ये काम दूसरे से नहीं करा सकते थे क्या? क्या बलि को दंड देने के लिए भगवान को आने की जरूरत थी क्या? नहीं, बहुत से काम, बहुत से रहस्य उन कामों के। बलि महाराज इस दंड के पीछे बहुत रहस्य समझ रहा था। बलि महाराज वाज अंडरस्टैंडिंग देयर मस्ट बी ए डिफरेंट पर्पस, ए हिडन पर्पस इन पनिशिंग हिम। इसके पीछे कोई रहस्य है। क्या रहस्य असल में है? ये है कि आदित्य माता, और आदित्य माता ने भी कश्यप से वही एक प्रश्न किया है, और दिति ने भी एक ही प्रश्न किया है। दिति ने कहा कि मेरे पुत्रों का हित के लिए मेरे को कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे हमारे पुत्रों का शत्रु इंद्र मारा जाए। और आदिति कहती है मेरे पुत्रों को अपना राज्य वापस मिल जाए, ऐसे नहीं कहती है शत्रु मारे। तो दोनों ने एक ही पुरुष से प्रश्न किया है, दोनों का पति एक है। दिति के प्रश्न के ऊपर कश्यप दुखी होके कहते हैं कहां मैं इसके सेवा से इसके वचनों में बंध गया हूं, लेकिन अब क्या करना चाहिए? एक साल का व्रत रखो और उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक साल भगवान की पूजा करेगी तो अंदर में जो द्वेष है वो समाप्त हो जाएगा। और ऐसे ही हुआ, वो 49 मारुत हुए और वो देवता बन गए, वो असुर भी नहीं बने, वो दैत्य भी नहीं बने। वो दित्ति के पुत्र जो उसने पूजा से प्राप्त किए वो 49 देवता बन गए। और आदित्य ने जब कहा मेरे पुत्रों को देखा नहीं है, तो बोला ब्रह्मा जी ने मुझे जो व्रत बताया था ये तो 12 दिन का पयो व्रत है, वो एक साल और ये 12 दिन, क्योंकि ये हित के लिए था, केवल शत्रु के विनाश के लिए नहीं था, और उन्होंने शत्रु नाश के लिए व्रत रखवाया था। आदित्य के व्रत, दित्ति और आदित्य के व्रत में एक साल का अंतर है। तो देखिए दोनों में काम एक है, बात दोनों अपने पुत्र के हित की चाह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे का अहित करके अपने पुत्र का हित चाह रही है। ये हुई दित्ति, और आदित्य केवल हमारे पुत्रों का हित हो, हमें किसी से अहित नहीं चाहिए, दोनों के। तो एक को व्रत 12 दिन का और एक को एक साल का। और इससे शिक्षा क्या मिलती है कि गलत कोई विचार करे तो उसको लंबा जप करने के लिए भेजना चाहिए, तो दिल्ली शुद्ध हो जाएगी और झंझट ही खत्म हो जाएगी। ये छोटे बच्चे कभी जिद करते हैं मुझे स्कूटर ले दो बाबा, स्कूटर पर 1 साल 16 माला करो तेरा स्कूटर आ जाएगा। आप बेचारा 16 माला करते करते बोला स्कूटर चलाना ही नहीं है अभी। तो ये आदित्य की तरह वो साधु हो जाएगा दित्ति की तरह। और कोई कहे कि मुझे मंदिर ले चलो तो बोले चलो अभी अभी का अभी चलो, और उसको बोले 12 दिन के मतलब तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा तो ले चल, साल का झंझट नहीं डालना। तो अच्छे काम में तत्काल काम करना चाहिए। तो ये कश्यप से सीखना है, एक ही काम करा है लेकिन दोनों के उद्देश्य में अंतर है। तो आपका कोई रहस्यमय छुपा हुआ उद्देश्य होगा तब आपने मुझे दंड दिया, नहीं तो आप हमारे शत्रु तो हो नहीं। और हिरण्यकशिपु क्या कह रहा था, पहले भगवान विष्णु ऐसे पक्षपात नहीं करता था, अब लगता है कि बच्चों की तरह टाफी जो देता है उसी को अंकल बोलते हैं, लगता है देवता इसको कुछ पूजा भेंट दे रहे हैं इसलिए उनको उनकी तरफदारी कर रहा है, नहीं तो पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। हिरण्यकशिपु इस तरीके से बात कर रहा है भगवान की भाव के प्रति। अब आखिरी लाइन में प्रभुपाद जी लिखते हैं, कॉन्सिक्वेंटली ही वॉज नाइदर अनहैप्पी नॉर अशेम्ड, क्योंकि भगवान का कोई और उद्देश्य होगा इसलिए उनको न लज्जा आ रही थी न ही उनको कोई पीड़ा हो रही थी, क्योंकि भगवान के द्वारा यह दिया गया था। तो इसलिए कहते हैं भगवान दुख दे या सुख दे, लेकिन देने वाला अगर भगवान है तो कभी दुखी नहीं होना चाहिए। सुख सपना दुख बुदबुदा दोनों है मेहमान, उसको आदर दीजिए जो भेजे भगवान। भाई भगवान की तरफ से आए हैं तो दोनों को आदर दीजिए, उसमें दुखी मत होइए। देने वाला कौन है? एक महात्मा के पास कोई भक्त गया, पर कोई उपदेश कीजिए महाराज। बोला बेटा शेर बनना जीवन में, कुत्ता मत बनना। तो मतलब महाराज इसका क्या अर्थ है, वैसे भी मेरी राशि तो शेर वाली है, मैं सिंह राशि का हूं। बोला बेटा शेर को जो मारता है ना वो उस चीज की ओर नहीं देखता है, मारने वाले के ऊपर नजर टिका नजर अपनी नजर जमा के रखता है, और कुत्ता जो चीज मारता है उसके पीछे भागता है, मारने वाले को नहीं देखता है। आप कुत्ते को पत्थर मारो कुत्ता पत्थर की ओर भागेगा आपकी ओर नहीं आएगा, लेकिन शेर सिर्फ मारने वाले को देखता है, किस चीज से मारता है इसको नहीं देखता है। पर इसका अर्थ यह है बेटा जीवन में सुख आए दुख आए उसके पीछे देने वाले के ऊपर नजर रखना, सुख और दुख के ऊपर नजर मत रखना, किसने भेजी है उसके ऊपर नजर रखना, यह हुआ शेर बनना। शेर बनने का मतलब है जहां से दुख आ रहा है जहां से सुख आ रहा है नजर उस भगवान के ऊपर टिकाए रखना तो आपको कोई पीड़ा लगेगी नहीं। और इसको पीड़ा क्यों नहीं लग रही है, क्योंकि भगवान के ऊपर नजर लगा के बैठा हुआ है, सामने भगवान खड़ा है तो पीड़ा कहां से आएगी भाई, अब पीड़ा आएगी कहां से। वो यशोमती माता यशोमती भगवान रो क्यों रहे थे, बोले बांध रही थी। भगवान कहता है मैं जिसके सामने जाता हूं वो दुखी भी सुखी हो जाता है, और मैं मेरी मां के सामने खड़ा हूं और ये और क्रोध करके मुझे बांध रही है। तो भगवान के आंखों में आंसू आ गए कि यहां मेरा का क्या मेरा कोई चमत्कार काम नहीं कर रहा है इसके ऊपर, मैं जिसके सामने जाऊं वो सुखी हो जाता, जो मुझे देखे उसका दुख दूर हो जाता है। और क्रोध क्या सब कुछ चला जाता है, और ये मेरी माँ मेरे सामने खड़ी है और ज्यादा मेरे को पकड़ के बांध रही है, तो भगवान ने आंसू बह रहे थे, क्या हो गया, मेरी शक्ति कहीं गुम हो गई, और माता के सामने सब कुछ उनका ढीला हो गया, बोला इसके प्रेम के सामने मैं क्या कर सकता हूं। तो इस श्लोक से हमको आज क्या लेना चाहिए, जीवन में दुख सुख आते हैं और हमारे कर्मों के हैं या भगवान ने भेजे हैं, दोनों हालत में प्रतीक्षा करनी चाहिए, कोई भगवान का इसके पीछे रहस्यमय उद्देश्य होगा और हमारा हित ही होगा, अहित कभी नहीं होता। ये बलि महाराज के चरित्र में आगे देखेंगे कि बलि महाराज के लिए भगवान ने व्यवस्था भी की, उसके लिए इंद्र पद का भी चिन्ह कर लिया आगे, और उनको भक्ति का भी आशीर्वाद दे दिया। तो ये अंत तो गत्वा लाभ होता है जो सहनशील होता है, और भगवान के दिए हुए सुख या दुख दोनों को समान स्वीकार करता है। भाई केवल सुखी भगवान दे तो अच्छा लगता है और दुख दे तो भगवान से कुछ लेना देना नहीं, ये ठीक नहीं है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है?
हरे कृष्ण प्रभु जी, कुछ जैसे आपने बताया कि जो हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं उनको हम भगवान की कृपा समझें या अपने पूर्व कर्म के जन्म का फल समझें, कैसे उसको लें हम अपने जीवन में?
कभी कर्म के होते हैं और कभी कर्म के नहीं होते हैं, भगवान भी सुधारने के लिए देते हैं। इससे पहले वाले श्लोक में ऐसा है कि कभी कभी भगवान अपने भक्तों को ऐसी परीक्षा में डालते हैं ताकि वो सीधे रास्ते पर, कोई गलती करते हैं तो उनको सीधे रास्ते पर डाल देते हैं। कभी कर्मों के नहीं भी होते हैं तो भगवान स्वयं परीक्षा में डालते हैं, तो वो हमारे भले के लिए होते हैं, पीछे उसके रहस्य ये है। तब भी सहन इसलिए करना चाहिए, मेरे ख्याल में ये प्रश्न उस दिन रुक्मिणी कृष्ण ने पूछा था और हमारे कमल लोचन कह रहे थे और ऑप्शन ही क्या है कि भगवान अगर दुख दे रहे हैं तो और किसके पास जाएं। एक बार भगवान श्री रामचंद्र ने धनुष बाण को एक मेंढक के ऊपर ऐसे कसा तो मेंढक चुप हो गया, भगवान को आश्चर्य लगा, बोला सांप तेरे पीछे आता है तो ट्रा ट्रा करके इतना चिल्लाता है, अब देख नहीं रहा है मैं तेरे को बाण मार रहा हूं तो चुप क्यों किया? बोला जब सांप आता है तो आपको बुलाता हूं, अब आप मार रहे किसको बुलाऊं, अब किसको बुलाऊं, अब जाऊं कहां? भाई कभी जब सांप कोई दूसरा मारता है तो आपको बुलाता हूं, अब आप ही बाण लेके खड़े तो और किसके पास जाऊं, अब चुप है, जो आपको चाहिए वो करो। तो ये ऐसे बलि महाराज कहते अब मैं और क्या करूं, जो आपको चाहिए वो करो, आपका इसमें मेरा ही हित होगा, जो भी आप करेंगे इसमें मेरा हित होगा। ये समझना बहुत मुश्किल है लेकिन ऐसे विश्वास करने वालों, अभी इंद्र को अभी बलि को कुछ मिला नहीं, अभी प्रतीक्षा कर रहा है, इंद्र बनेगा अगले मनमंत्र में, अभी तो आधा दिन पूरा, अभी तो ये मनु जाएगा उसके बाद बनेगा, अभी तो ये चल रही है 27वीं चतुर्युगी, तो 71 पूरे होंगे उसके बाद इसकी बारी है, 71 बार चार युग बदलते हैं तब एक मनु बदलता है, तो अभी तो बहुत समय तक बलि महाराज को सूतल लोग में रहना पड़ेगा, लेकिन इतना प्रतीक्षा करने के लिए तैयार है ना, भगवान का दर्शन मिल रहा है, सुख सुविधा सब उधर है, प्रहलाद महाराज सत्संग सुना रहा है, और क्या चाहिए। तो जैसे भी भगवान रखे, जिस विद रखे राम तिस विद रहिए, हानि हो या लाभ, ये जो सिद्धांत ये है, कभी सब कुछ ले लेता है कभी सब कुछ दे देता है, और जो दे तभी खुश और जब ले तभी खुश, सुख में फूलो नहीं दुख में भूलो नहीं, गोविंद गोपाल गाते चलो, बस ये अपने काम को चालू रखो, हरि नाम का खजाना लुटाते चलो, बस ये काम ठीक है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू भाजी। भाजी जैसे आपने कहा था कि हमको शेर बनना है और कुत्ता नहीं बनना, लेकिन जैसे भगवान के द्वारा प्रलोभन दिए जाते हैं तो हम उसमें फिसल जाते हैं कि ये भगवान के द्वारा दिया गया है, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उस परिस्थिति हम कैसे समझे कि हमें ये एक्सेप्ट
करना है? आपकी नजर भगवान के ऊपर होनी चाहिए, अगर वो दे रहा है तो उसकी सेवा में लगना चाहिए, तो आपकी नजर भगवान के रही भी तो प्रलोभन जो भी होगा, भाई कोई आपको मानो कि 5 किलो सोना देता है तो देने वाला अगर भगवान है तो भगवान के लिए हार बना लो, अपने लिए मत बना, नहीं तो गले में पड़ जाएगा। एक भगवान को सोने का हाल एक वैशा देने के लिए आई, तो पुजारी डर गया कि वैशा से बात कैसे करूं, नहीं जाइए, तो पीछे से भगवान ने पुजारी को मुक्का मारा, बोला तेरे को दे रही है मेरे को दे रही है, अरे तुमको इनसे डर लग रहा है, मुझे थोड़ी डर है, ला मेरे को दे, तुम मत लेना, तुम्हारे लिए लोगे तो फंस जाओगे, मैं लोगे तो मुझे क्या करेगा ये, ला मेरे गले में डाल दे। तो ऐसे है कि वैशा से ब्रह्मचारी को भागना चाहिए, लेकिन भगवान को क्या, वो तो खुद जाके घर में चलेगा सीधे ये राम राम करने के लिए, उनको क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि तुमको नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो दे मेरे को रही है ना। तो अगर आपको देखो कि ये जो दे रहा है ये भगवान के लिए है, तो आपको उसके बीच में तो पड़ना ही नहीं है, उधर पहुंचा देना है, आपका काम खत्म। कुछ भी मिलता है तो भगवान का है, हमारा नहीं है। ये भाव शेर का भाव ये है कि देने वाला कौन है, जो देने वाला है उसी के ऊपर नजर टिकी रहे, अब और कहीं नजर जाए नहीं। वो कुत्ते वाला भाव हो गया कि देने वाला ने दिया तो मैं उसी के पीछे भागता है। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की, श्रीमद भागवत महापुराण की जय। गौर प्रेमानंद।